प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका है आपसे सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि राज्यों से क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी और उन विशिष्ट व्यक्तित्व को भी हम याद करेंगे जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्मदिवस। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक।
हेलो दिव्या, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को होस्ट दिव्या तोमर। एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first. Prime Minister Narendra Modi says Quad is poised to remain a long-term partnership and ready to collaborate with Indo-Pacific nations for mutual growth.
भारत वर्ष 2025 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
New Delhi signs agreements on clean and fair economy under Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity.
अमरीका ने भारत से चुराई गई लगभग 300 कलाकृतियां वापस की।
वर्ल्ड राइनो डे बीन ऑब्जर्व टुडे।
और चेन्नई में भारत ने पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में बांग्लादेश को 280 रन की करारी शिकस्त दी।
And now, Divya, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about World Rhino Day and World Rivers Day. Well, Joy Adamson very famously said, "Wildlife is something which man cannot construct. Once it is gone forever." Well, every year World Rhino Day is celebrated on September 22nd to raise awareness about the importance of protecting and conserving the rhino species globally. People from all over the world celebrate these majestic creatures and encourage efforts to preserve the habitat and ensure the survival for future generations.
अभिषेक, आज विश्व गेंडा दिवस है। अवैध शिकार और आवास के नुकसान के बढ़ते खतरों के साथ विश्व गेंडा दिवस हर बार ये याद दिलाता है कि हमें संरक्षण कार्रवाई की कितनी जरूरत है। ये दिन पहली बार 2011 में मनाया गया था। ये संरक्षणवादियों, वन्य जीवों के प्रति दया भाव रखने वाले लोगों और सरकारों को गेंडों के सामने आने वाले खतरों से निपटने के लिए एकजुट करता है, जिसमें अवैध शिकार, आवास का नुकसान और गैरकानूनी वन्यजीव व्यापार जैसे खतरे शामिल हैं।
यस, एंड इन आवर कंट्री होम टू द ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसेरस प्राइमरली फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ असम। इंडिया नेपाल हैव एस्टिमेटेड ओवर 4,000 राइनोस विद मेजर पॉपुलेशंस रिसाइडिंग इन काजीरंगा नेशनल पार्क। एंड दिस ग्रोथ इज अ रिजल्ट ऑफ सक्सेसफुल प्रोटेक्शन इनिशिएटिव्स, but the challenges remain, including the need to curb poaching and ensure habitat preservation.
2024 तक चल रहे संरक्षण प्रयासों के कारण भारत में गेंडों की आबादी लगातार बढ़ रही है। अवैध शिकार से बचाव के लिए गश्त, आवास बहाली और स्थानांतरण कार्यक्रमों जैसे प्रयासों ने गेंडों की आबादी को स्थिर करने और बढ़ाने में मदद की है।
And on the occasion of the World Rhino Day, Prime Minister Narendra Modi has reiterated India's commitment to protect rhinos. In a social media post, Mr. Modi complimented workers who have been involved in rhino conservation efforts over the last many years.
साथ ही श्री मोदी ने ये भी कहा है कि ये बहुत गर्व की बात है कि भारत में एक सींग वाले गेंडे बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। उन्होंने असम में काजीरंगा की अपनी यात्रा को याद किया और सभी से वहां जाने का आग्रह किया।
Yes, and now moving on to our second topic of the day, that is the World Rivers Day. Well, Divya, time is a sort of river of passing events, and strong is its current. No sooner is a thing brought to sight than it is swept away by another, takes its place, and this too will be swept away. Well, World Rivers Day 2024 has been celebrated on the 22nd of September, that is today. It falls on the fourth Sunday of September each year. And this day emphasizes river conservation and sustainable management.
बिल्कुल, नदियां और झीलें पृथ्वी पर जीवन के लिए मीठे जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनमें दुनिया का 1% से भी कम पानी है। ज्यादातर जल महासागरों में है और नमकीन है, जो कि पीने योग्य नहीं है, और शेष ग्लेशियर में जमा हुआ है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपनी नदियों की रक्षा करें और अपने ग्रह के महत्वपूर्ण संसाधन मीठे जल की देखभाल करें और उसे बचाएं।
Today, rivers face an enormous challenge posed by humans due to climate change, rapid urbanization. Our rivers and waterways have been polluted by chemicals, sewage and household waste, which can cause serious harm to animals and humans too. In fact, an estimated 300 to 400 million tons of waste is thought to pollute our rivers and seas every year.
2005 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध नदी संरक्षणवादी मार्क एंजेलो ने जल जीवन अभियान के दौरान संयुक्त राष्ट्र से संपर्क किया। ये एक दशक लंबी पहल थी, जिसका उद्देश्य पूरे ग्रह पर खतरे में आए जल संसाधनों के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। एंजेलो ने अभियान को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए वार्षिक विश्व नदी दिवस की वकालत की।
वर्ल्ड रिवर्स डे वाज सीन बाय एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एज अ गुड बेट for the aims of the World for Life Decade and other proposals.
पहला विश्व नदी दिवस 10 से ज्यादा देशों में मनाया गया था। अब ये वार्षिक कार्यक्रम 60 से ज्यादा देशों में मनाया जाता है और इसमें लाखों लोग भाग लेते हैं। ये दिन लोगों को इन महत्वपूर्ण जलमार्गों के स्वास्थ्य और संरक्षण की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो दुनिया भर के पारिस्थितिकी तंत्र, समुदायों और अर्थव्यवस्थाओं के लिए जरूरी है।
Yes, Divya, and it is not just rivers themselves which are fascinating, it is the wonderful wildlife that lives in them too. Rivers provide a home for all kinds of creatures, including insects, amphibians, birds, reptiles, mammals, and over 10,000 species of fish. Rivers form an integral part of the environment, and there are many communities whose survival livelihood depend on rivers.
और इसी पर अभिषेक, रॉबर्ट स्वान ने एक बात कही है कि हमारे ग्रह के लिए सबसे बड़ा खतरा ये विश्वास है कि कोई और इसे बचा लेगा, तो इसलिए हमें अपने ग्रह को स्वयं ही बचाना होगा और वन्य जीवन को स्वयं बचाना होगा। तो वन्य जीवन और नदियों को बचाने के लिए हाथ मिलाएं। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि क्या कुछ खास है उनके पास। चलते हैं नागपुर। केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान की पहल की गई है। इसके तहत नागपुर नगर निगम की ओर से आज स्वच्छता दौड़ का आयोजन किया गया। आइए जानते हैं इस विषय पर अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता की संकल्पनानुसार केंद्र सरकार के स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत नागपुर नगर निगम की ओर से आज स्वच्छता दौड़ का आयोजन किया गया था। नगर निगम आयुक्त एवं प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी, कलेक्टर विपिन इटनकर आदि अफसरों ने हरी झंडी दिखाकर स्वच्छता दौड़ की शुरुआत की। इस माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों से लेकर बच्चों, युवाओं, छात्रों, गैर सरकारी संगठनों के स्वयंसेवकों ने नागपुर को एक स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ शहर बनाने का निर्णय लिया। इस दौड़ में 7 साल के बच्चों से लेकर 75 साल के बुजुर्ग के साथ साथ लगभग 2000 लोग शामिल हुए। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय विजेता प्रतिभागियों के साथ दौड़ में भाग लेने वाले वरिष्ठ नागरिकों, गैर सरकारी संगठनों और परिवारों के सभी सदस्यों को भी सम्मानित किया गया। इस अभियान के तहत नगर निगम आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी, इन्होंने आह्वान करते हुए कहा कि
मैं सभी नागपुर के वासियों को भी आह्वान करता हूं कि हमारी सिटी स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए एक जो स्लोगन उपक्रम का है, स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता, उसका हम सभी ने ध्यान में रखना चाहिए और सिर्फ एक स्लोगन नहीं, इसको हमने इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सभी लोग अगर हम कंट्रीब्यूट कर पाए तो ही हम हमारी सिटी जो है एक स्वच्छ और सुंदर, एक वर्ल्ड क्लास सिटी बना पाएंगे।
परिक्रमा के लिए आकाशवाणी नागपुर से मैं नम्रता फलके।
द फूड अलोंग मेगा इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 कंक्लूडेड टुडे। द इवेंट स्टार्टेड ऑन 19th ऑफ सितंबर एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली। अराउंड 90 कंट्रीज, 26 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, 18 central ministries and allied government bodies took part in the event. The event highlighted India's emerging role as a global powerhouse in food processing. The event was a major convergence of innovation, technology, sustainability in the food processing sector. We have more from our correspondent Sumit.
The third edition of the World Food India hosted over 40 knowledge sessions, including thematic discussions, state and country-specific conferences. Japan was a partner country and Vietnam and Iran were the focus countries for the event. The first day saw a CEO roundtable conference chaired by Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and Food Processing Minister Chirag Paswan. The conference tried to bridge the gap between the industry and the government and try to solve most of their problems. The second edition of the Global Food Regulators Summit, hosted by Food Safety and Standards Authority of India, was also held in conjunction with the World Food India. National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management Director, Dr. Harinder Singh Oberoi, spoke about the event.
NIFTAM, Ministry of Food Processing Industries ka ek institute hai, which is Institute of National Importance, jo Kundli mein located hai. So ek tarah se ek NIFTAM ko mantralay ki badolat, mantralay ki wajah se ek platform mil gaya apni outreach bahane ka, jo shayad hame nahi mil pata agar ye WFI organize kiya hota. To ministry ke, kyunki hum ministry ka ek abhin ang hai.
An exhibitor who displayed plant-based products in the event expressed how the event helped them connect with customers and partners.
Namaskar, main Vinay Upadhyay from Flavoring Red Production Services Private Limited. Humko Ministry of Food Processing ne bahut sahyog kiya hai is exhibition mein aur hum se expect kar rahe hain ki ye isi tarah se hamara sahyog banaye rakhe. Is exhibition ke aane ke baad mein hum kafi customers ko mile hain, kafi partners ko mile hain jinke sath mein hum global reach expect karte hain.
Sumit Saha for Parikrama.
और अब अगली खबर है महाराष्ट्र के पुणे से। जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों को मानवीय, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने के लिए एचसीएल कॉन्सर्ट और पूर्णम फाउंडेशन द्वारा भरतनाट्यम को एक माध्यम के रूप में उपयोग किया जा रहा है। इसका पहला नृत्य आविष्कार हाल ही में पुणे में आयोजित किया गया। पृथ्वी पर बिगड़ते जलवायु परिवर्तन और वनों की कटाई, औद्योगिकरण, उपभोक्तावाद और जीवाश्म ईंधन के विनाशकारी प्रभावों का एक शक्तिशाली चित्रण इक्षणा नाम के भरतनाट्यम कार्यक्रम के माध्यम से किया गया। हमारे पुणे संवाददाता मनोज की रिपोर्ट।
इक्षणा का मतलब है दृष्टिकोण। इस कार्यक्रम की अवधारणा पर्यावरण के बारे में कुछ प्रयोगों को कला के माध्यम से प्रस्तुत करने की चर्चा से उत्पन्न हुई। पर्यावरण जैसे कठिन मुद्दों को नागरिकों तक सरल तरीके से पहुंचाने के लिए कला एक प्रभावी माध्यम है। इसमें विभिन्न पारंपरिक रचनाओं के साथ साथ मराठी, बंगाली, तमिल सहित विभिन्न भाषाओं के लोक संगीत का उपयोग किया जाता है। प्रशंसकों से संवाद करने के लिए मराठी, बंगाली, संस्कृत, अंग्रेजी, कर्नाटक की कोड़वा भाषा, झारखंड की भाषा का भी इस्तेमाल किया गया है। इससे हर कोई पर्यावरण की दिशा में कदम बढ़ाने के प्रति जागरूक हो रहा है। प्रयोग के दौरान दोबारा इस्तेमाल होने वाले पोशाक का उपयोग किया जाता है। सुरुचिपूर्ण पदन्यास, संगीत और ताल वाद्य यंत्रों की उचित संगत, इंटरैक्टिव रचना जैसे विभिन्न पहलुओं को जोड़कर कलाकारों ने भरतनाट्यम नृत्य के माध्यम से पर्यावरण जागरूकता लाने का ये प्रयास किया है। इक्षणा कार्यक्रम भरतनाट्यम के माध्यम से वर्तमान ग्लोबल वार्मिंग से मानव विकास के चरणों का पता लगाने का एक अवसर भी है। इस नृत्य के माध्यम से विकास के विभिन्न चरणों जैसे पृथ्वी का निर्माण, मानव का विकास, कृषि का आविष्कार, औद्योगिक क्रांति और संचार के बढ़ते साधनों की खोज पर पर्यावरण के प्रभाव को प्रस्तुत किया गया है। कार्यक्रम मौसम में बदलाव से लेकर ग्लोबल वार्मिंग तक के चरणों पर प्रकाश डालते हुए पर्यावरणीय क्षति का पता लगाता है। पुणे से रमा क्षीरसागर और दिल्ली से तान्या सक्सेना ये भरतनाट्यम नृत्य कार्यक्रम ईक्षणा प्रस्तुत कर रही है। ये कार्यक्रम सबसे पहले पुणे में पेश किया गया है। अब इसके बाद बेंगलुरु, चेन्नई और दिल्ली में भी पेश किया जाएगा। शो का निर्देशन और कोरियोग्राफी तान्या सक्सेना इनकी है। ये नृत्य आविष्कार इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि केवल मनुष्यों को ही अपने आसपास के पर्यावरण की रक्षा करना याद रखना होगा। परिक्रमा के लिए मनोज क्षीरसागर, पुणे।
Recently, the State Level Bankers Committee of Meghalaya and NABARD organized an awareness program aimed at educating the youth of Meghalaya about financial matters and encouraging them to save. A large number of students participated where they were provided with useful information about the recently launched Central NPS Vatsalaya Scheme, financial literacy and saving.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में केंद्रीय एनपीएस वात्सल्य योजना की आधिकारिक रूप से शुरुआत की है। योजना के प्रमुख हिस्से के रूप में इस योजना के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई और एक आधिकारिक पुस्तिका जारी की गई। लॉन्चिंग अवसर पर नए नाबालिग ग्राहकों को स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या प्राण कार्ड भी वितरित किए गए। इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए मेघालय की राज्य स्तरीय बैंकर समिति एसएल एनटीपीसी और नाबार्ड ने एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। राजधानी शिलांग के दो स्कूलों में आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों में छात्रों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। एक जागरूकता कार्यक्रम केलियन मेमोरियल स्कूल में आयोजित किया गया, जिसमें वित्तीय योजना और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के लाभों के बारे में छात्रों को शिक्षित किया गया। इसके बाद शिलांग के अपर लासुमियर में ग्रेस अकादमी स्कूल में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों को बचत करने के तरीके के बारे में बताया गया और उन्हें वित्तीय साक्षरता की जानकारी दी गई। छात्रों को बताया गया कि एनपीएस वात्सल योजना माता पिता को बच्चों के भविष्य के लिए पेंशन खाते में निवेश कर बचत करने की अनुमति देगी, साथ ही चक्रवृद्धि माध्यम से दीर्घकालिक संपत्ति सुनिश्चित की जाएगी। योजना के तहत माता पिता अपने बच्चों के नाम पर सालाना 1,000 रुपए का निवेश कर सकते हैं। यह नई पहल बच्चों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से बनाई गई है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी शिलांग से परितोष दीक्षित।
And now it's time for the Defence News Capsule from the Directorate of Public Relations, Ministry of Defence. The report has been filed by Broadcasting Officer Anand Saurav.
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पिछले वर्ष सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नाम पद्मवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया था, तो किसने कल्पना की थी कि यह आर्म्ड फोर्सेस के कुछ शूरवीरों को, कुछ जाबाजों को वह करने का प्रेरणा देगा जो आज तक इस देश में कभी नहीं हुआ था। एक्सपेडिशन परमवीर भागीरथ प्रयास का नाम है, जिसे आर्म्ड फोर्सेस और इंडियन कोस्ट गार्ड के 11 बहादुरों ने अंजाम दिया, जिसके तहत अंडमान निकोबार के इन 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे गए द्वीपों पर ये तैराक गए और उन्होंने भारत का झंडा, हमारा तिरंगा शान से लहराया। आज के इस डिफेंस न्यूज कैप्सूल में हम बात करेंगे उस टीम से जिन्होंने अथाह अंडमान सागर में इस एक्सपेडिशन को अंजाम दिया और इतिहास में अपना नाम दर्ज कर गए। आइए मिलते हैं एक्सपेडिशन परमवीर के टीम लीडर, विंग कमांडर परमवीर और उनके अन्य टीम मेंबर्स से। अगर आप हमें अपने इस एक्सपेडिशन के बारे में बताएं, कैसे ये कॉन्सेप्चुलाइज किया गया और कैसे इसे अंजाम दिया गया।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने 21 द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर 23 जनवरी 2023 को किया। नामकरण की पहली वर्षगांठ पे अंडमान और निकोबार कमांड सिनकैन के द्वारा एक ऐतिहासिक स्विमिंग एक्सपेडिशन को लॉन्च किया। इसका नेतृत्व का सम्मान मुझे प्राप्त हुआ। मेरा पानी की क्षेत्र में तैराकी और राफ्टिंग में 16 वर्ल्ड रिकॉर्ड, कई एशियन और नेशनल रिकॉर्ड हैं। एक्सपेडिशन परमवीर की पहली तैराकी में 93 वॉलंटियर्स ने अपना नाम दिया, जिनका चयन स्विमिंग पूल में 2 किलोमीटर नॉनस्टॉप स्विम टेस्ट के बाद हुआ, जिसमें 58 तैराक का चयन हुआ। 22 मार्च को एक्सपेडिशन का फ्लैग ऑफ सिनकैन द्वारा हुआ और एक्सपेडिशन फ्लैग टीम लीडर को सौंपा गया। यह फ्लैग हमारे साथ सारे 21 द्वीप गया। 58 तैराकों ने तकरीबन 2 किलोमीटर समुन्द्र में श्री विजयपुरम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप तक तैराकी की। सेकेंड फेज में इन 58 तैराकों को स्विमिंग पूल में फिर दोबारा से लाया गया और 5 किलोमीटर नॉनस्टॉप स्विमिंग का टेस्ट कराया गया। उसमें 21 तैराकों का सिलेक्शन हुआ। इन 21 तैराकों को एक्सटेंसिव ट्रेनिंग दी गई, प्रैक्टिस स्विम पे फोकस रखा तथा डाइट, न्यूट्रिशन और शारीरिक कंडीशनिंग पर विशेष ध्यान रखा गया। फाइनल 3-11 तैराकों की रखी गई, जिसमें सेना के 3, नौसेना के 4, वायुसेना के 2 और तटरक्षक के 2 तैराक शामिल थे। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सभी तैराकों ने स्विमिंग ट्रंक, कैप और गॉगल्स का इस्तेमाल किया। बॉडी सूट का कोई प्रयोग नहीं किया गया पूरी तैराकी के दौरान। एक्सपेडिशन परमवीर ने 300 किलोमीटर से ज्यादा तैराकी की, जिसमें 70% अगेंस्ट द करंट थी। एक्सपेडिशन का औपचारिक रूप से समापन 15 अगस्त को, जिसमें 78 तैराकों ने स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप से मरीना बीच श्री विजयपुरम तैराकी पूर्ण की। कोई भी एक्सपेडिशन बिना उपलब्धियों के बारे में बताना इनकम्प्लीट होगा, तो मैं दर्शाना चाहता हूं कि ये एक पहली तैराकी अंडमान द्वीपों में हुई, इससे पहले किसी ने कोई तैराकी नहीं की। एक्सपीडिशन परमवीर ने कई नए स्विमिंग चैनल्स खोले, ये टूरिज्म के प्रति एक बहुत बड़ी पहल थी। ऐसे नए चैनल्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत पॉपुलर होते। हम सभी को इस बात पर बहुत खुशी होती है कि एक्सपीडिशन परमवीर बिना किसी अप्रिय घटना के संपन्न हुआ, जो कि किसी भी इतने बड़े एक्सपीडिशन के लिए गर्व की बात है।
मेरा नाम हवलदार पवन कुमार है, मैं 101 GR से हूँ। और ये एक्सपीडिशन हमने जो है 22 मार्च को जो स्टार्ट किया था, और इसमें हमें काफी चैलेंजेस आए। आपने जैसे सभी ने बोल दिया, अभी सभी ने बताया इसके बारे में, तो मैं ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि समुन्द्र में जो है स्विमिंग करने के लिए कोई आसान बात नहीं है। इसमें क्या हम जमीन में जैसे हम देखते हैं तो हम अपने आगे जो है काफी विजिबिलिटी काफी हमारा ज्यादा रहता है, और हम क्या करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस तक देख सकते हैं, लेकिन समुद्र में ऐसा कुछ नहीं है। समुद्र में हम सिर्फ पानी के नीचे, हम ऐसा कुछ विजिबिलिटी नहीं होता है, कुछ वो नहीं होता है, लेकिन हम डिपेंड रहते हैं। हमारे साथ जो ये मार्कोस के जो शार्प शूटर थे, ये लोग हमें डिफेंस करते थे हमें, और ये हमें प्रोटेक्ट करके जो हमें आगे जो है एडवांस लेके जाते थे, तो उसी के कारण हमने जो है ये जो एक्सपीडिशन पूरा कर पाए हैं। और इसका श्रेय जाता है हमारे जो है विंग कमांडर, जिन्होंने एक्सपीडिशन को लॉन्च किया था, हमारे विंग कमांडर परमवीर सर, उन्होंने हमें अपनी टीम में पार्टिसिपेट किया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।
परिक्रमा के लिए डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मैं आनंद सौरव।
एंड नाउ वी विल टेक ऑन अ टूर ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल एंड रिकॉल इवेंट्स दैट हैपेंड ऑन दिस डे।
100 years ago, on this day in 1921, Mahatma Gandhi took the epoch-making decision to only wear a simple dhoti and shawl for the rest of his life, a vow that became part of history as well as Mahatma's own identity.
Gandhiji became one with the poor through his attire, and in the infamous words of imperialist British Prime Minister Winston Churchill, became the half-naked fakir who defeated the might of the British Empire. Today we also remember the great educationist Karamveer Bhavrao Patil, who was born on this day in 1887 at Kolhapur, Maharashtra. Greatly influenced by the philosophy of Mahatma Gandhi, he was a freedom fighter who understood the critical importance of self-reliant mass education as an integral part of the freedom movement.
He founded the Rayat Education Society and played an important role in educating the so-called backward castes and the low-income people. He was a prominent member of Satya Shodhak Samaj, founded by Mahatma Jyoti Rao Phule, and used to perform Satya Shodhaki Jalsas in the villages of Maharashtra and awaken the people to the dire consequences of the social evils of the time.
During his lifetime, Bhavrao established 108 secondary schools, 578 voluntary schools, 6 training colleges, 3 colleges and 38 boarding schools, with many of them being devoted to girls' education.
During a public meeting in 1921, Bhavrao met Gandhiji at Mumbai and was highly impressed by Gandhiji's appearance in a loincloth and his philosophy of khadi. Following this encounter, Bhavrao decided to adopt the khadi attire and follow Gandhian principles in everyday life.
Bhavrao adopted the motto, education through self-help and earn while you learn, which Gandhiji had enshrined in his Nayi Talim system of education.
Bhavrao's sterling achievements is that within himself, he combined the inspiration from two Mahatmas, Gandhi and Phule, and carried forward the common principles of social reform. May we get inspired by his passion for mass education and work towards ensuring it for all Indians.
और आइए अब जानते हैं खेल जगत की हलचल के बारे में। चेन्नई में भारत ने बांग्लादेश से पहला क्रिकेट टेस्ट मैच 280 रन से जीत लिया है। खेल के चौथे दिन बांग्लादेश को मैच जीतने के लिए 357 रन की आवश्यकता थी, लेकिन पूरी टीम केवल 234 रन पर ही सिमट गई। मैच के तीसरे दिन कल शुभमन गिल और ऋषभ पंत के शतकों की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 515 रन का लक्ष्य दिया था। दूसरा टेस्ट मैच 27 सितंबर से कानपुर के ग्रीन पार्क में खेला जाएगा।
Yes, and in the ongoing Chess Olympiad 2024 at Budapest in Hungary, the Indian teams competing in the Open and the Women's section are on the verge of creating history by winning 2 gold medals for the country in the competition.
और अब समय है उन व्यक्तित्व को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्मदिवस. श्रोताओं आज सबसे पहले याद कर रहे हैं नवाब मोहम्मद मंसूर अली खान पटौदी को.
यस, ऑल्सो नोन एज मंसूर अली खान और एमएके पटौदी, निक नेम्ड टाइगर पटौदी, हु पास्ड अवे इन 2011. ही वॉज एन इंडियन क्रिकेटर एंड अ फॉर्मर कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम. पटौदी वॉज अपॉइंटेड इंडियन क्रिकेट कैप्टन एट द एज ऑफ 21 and described as one of his greatest. Pataudi was also called the best fielder in the world of his time by commentator John Arlott and former England captain and contemporary Ted Dexter.
और अब बात करते हैं दुर्गा खोटे की. कुछ किरदार ऐसे होते हैं जिनका जीवन झकझोर कर रख देता है. ऐसा ही एक किरदार था दुर्गा खोटे. हिंदी और मराठी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री दुर्गा खोटे की आज पुण्यतिथि है. उन्होंने 26 वर्ष की उम्र में पति को खोया और फिर बेटा. इतने दुख के बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अनेक फिल्मों में शानदार अभिनय कर फिल्म जगत में अपना नाम कमाया. दुर्गा खोटे को दादा साहब फाल्के पुरस्कार, पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार आदि से सम्मानित किया गया. उन्होंने 1937 में साथी नाम की एक फिल्म का निर्माण और निर्देशन भी किया और करीब 200 फिल्मों के साथ ही सैकड़ों नाटकों में भी अभिनय किया. आइए सुनते हैं.
मैं तेरी माँ. अखिया लगे तुम तारे प्यारे थोड़ा.
यस, एंड इंद्रजीत लंकेश वॉज बॉर्न ऑन दिस डे 1976. ही इज एन इंडियन फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ कनाडा एंड हिंदी फिल्म्स. ही इज ऑल्सो द पब्लिशर ऑफ द वीकली कनाडा टैब्लॉइड लंकेश पत्रिके. And he is the son of iconic writer, journalist and filmmaker P. Lankesh. And also Divya Ronaldo Luis Nazario de Lima was born on this day in 1976. Mononymously known as Ronaldo, he is a Brazilian former professional footballer who played as a striker. He is the owner of Brasileiro Sierra A club Cruzeiro and the owner and the president of La Liga club Real Valladolid, nicknamed O Fenomeno, the Phenomenon, and R9. He is considered one of the greatest players of all time. As a multifunctional striker who brought a new dimension to the position, Ronaldo has been an influence for a generation of strikers that have followed. His individual accolades include being named FIFA World Player of the Year 3 times and winning 2 Ballon d'Or awards.
और गोवा में 1941 में जन्मी फिल्म अभिनेत्री आशालता बावगांवकर की आज पुण्यतिथि है. उन्होंने 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया. वे एक मराठी गायिका, नाटककार और फिल्म अभिनेत्री के रूप में प्रसिद्ध थी. बॉलीवुड में वो पहली बार बासु चटर्जी की फिल्म अपने पराये में नजर आई और फिल्म जंजीर में उन्होंने अमिताभ बच्चन की सौतेली मां का किरदार किया था. वहीं आज सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की 485वीं पुण्यतिथि है. वर्ष 1539 में 22 सितंबर को नानक देव जी का देहावसान हुआ था. वे सिखों के प्रथम गुरु थे. इनके अनुयायी इन्हें गुरु नानक, बाबा नानक और नानक शाह नामों से संबोधित करते हैं. उन्होंने लोगों को प्रेम, एकता, समानता और भाईचारे का संदेश दिया था. उन्होंने आत्मज्ञान पर जोर दिया और सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा का संदेश दिया.
Nicholas Edward Cave was born on this day in 1957. He is an Australian musician, writer and actor, known for his baritone voice and for fronting the rock band Nick Cave and the Bad Seeds. Cave music is characterized by emotional intensity, a wide variety of influences and lyrical obsessions with death, religion, love and violence. Let's listen into his hit track, The Ship's Song, and it's from his album, The Good Son.
Come sail your ships around me. And burn your bridges down. We make it.
और शारदा देवी रामकृष्ण परमहंस की जीवन संगिनी थी. आज उनकी जयंती है. 19वीं सदी के हिंदू रहस्यवादी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी और आध्यात्मिक पत्नी उनकी 6 वर्ष की शारदा मणि से 23 वर्ष के रामकृष्ण परमहंस के साथ विवाह हुआ था. कुछ वर्ष बाद रामकृष्ण परमहंस अपनी पत्नी शारदा देवी को दिव्य माता की प्रतिमूर्ति मानने लगे. और श्रोताओं अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए दिव्या तोमर और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की. नमस्कार,
नमस्कार।